الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
एक مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم The parents and the grandparents of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم اس عنوان پر آپ کے سامنے گزشتہ مجلس میں باتیں ہو رہی تھی پارٹ ون میں نے اس دن آپ کو بیان کر دیا اب آئیے اسی ٹاپک پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور آپ کے دادا دادی کے عنوان پر جو ہمارا ٹائٹل چل رہا ہے اس کے پارٹ ٹو کو اب آپ کے سامنے میں بیان کرو لیکن اس کے پہلے کہ میں پارٹ ٹو کو آپ کے سامنے بیان کروں پارٹ ون کا ذرا ریکیپ ہو جائے ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام شیبہ تھا اور کس طریقے سے بعد میں وہ عبد المطلب بن گیا ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ ان کے بیٹے عبداللہ کو کتنے بڑے امتحان سے گزرنا پڑا اور کیسے پھر وہ ذبیح اللہ بن گئے ہم نے بیان کیا تھا کہ بیٹے عبداللہ کی جب شادی ہوئی ہے آمینہ بی بی سے تو وہ راستے میں کیا مسئلہ پیش آیا تھا فاطمہ کنانیہ کے ساتھ وہ بھی تفصیل سے بیان کیا گیا اور اخیر میں ہم نے یہ بھی بیان کیا کہ کیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب خواجہ عبداللہ کا سفر میں انتقال ہو گیا اور بی بی آمینہ پریگننسی کے عالم میں ہے اور وہ بیوہ ہو چکی ہے اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمینہ بی بی اپنے خسر اپنے فادر ان لا حضرت عبد المطلب کے ریکویسٹ کرنے پر انہی کے گھر پر رہ گئی اور اپنے خسر کے گھر پر وہ زندگی گزار رہی ہے پریگننسی کا عالم ہے پیٹ میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور یہ جو حمل کے ایام چل رہے تھے ایک دن ایسا ہوا کہ عبد المطلب نے اپنی بہو کو بلایا یعنی آمینہ بی بی کو بلایا اور آمینہ بی بی کو بلا کر ذرا ناراضگی کے انداز میں یہ کہا کہ بیٹی اے میری بیٹی اے میری بہو برا مت ماننا محسوس مت کرنا لیکن مکہ والے تیرے بارے میں بہت باتیں کر رہے ہیں. میں جہاں جہاں مکہ میں جاتا ہوں مکہ والے تیرے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں اور مجھے سنا رہے ہیں کہ تمہاری بہو بیوہ ہے, اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, لیکن تمہاری بہو جب مکہ کی گلیوں میں نکلتی ہے تو اتنی خوشبو لگا کر نکلتی ہے اور ایسے ایسے فریگرنس کا استعمال کرتی ہے کہ لوگوں کے سر چکرا جائے, اور سارے لوگ یہی باتیں کر رہے ہیں کہ بیوہ ہو کر یہ خوشبو کا استعمال کیوں کرتی ہے. اے بی بی آمینہ, تو میری بیٹی کے برابر ہے, برا مت لگانا, لیکن اب تیرا خسر بوڑھا ہو چکا ہے, میرے بال سفید ہو چکے ہیں, لوگ مجھے تانے دے رہے ہیں, میں کعبہ کا متولی ہوں, میں قبیلے کا سردار ہوں, لوگ میرے سامنے آ کر تیرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بہو بیوہ ہے, اس کے باوجود یہ خوشبو لگا کر نکلتی ہے. بول آمینہ بی بی, تو ایسا کیوں کرتی ہے؟ آمینہ بی بی نے جواب دیا اور یہ آنسر اپنے خسر کو دیا کہ سچ کہتی ہوں, اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہو کہ جب میرے شوہر زندہ تھے, جب میرے شوہر زندہ تھے میں اس وقت بھی خوشبو استعمال نہیں کرتی تھی, اور خدا کی قسم جب سے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا استعمال کرنے تو دور کی بات ہے, میں نے تو خوشبو کو ٹچ بھی نہیں کیا ہے. تو اس وقت خواجہ عبد المطلب نے یہ کہا کہ جب تم نے خوشبو کو ٹچ نہیں کیا تو لوگ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں, کیوں تمہارے بارے میں یہ باتیں کہی جا رہی ہے, اور یہ خوشبو کو تو میں خود بھی محسوس کرتا ہوں. تو اس وقت آمینہ بی بی نے کہا, لوگ جو کہتے ہیں وہ غلط نہیں کہتے, آپ جو کہتے ہو وہ غلط بات نہیں ہے, لیکن ابا جان جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے, جب سے میں حاملہ ہوئی ہوں, سچ بات یہ ہے میں بولتی ہوں تو میری زبان سے خوشبو پھوٹنے لگتی ہے, میں مجھے پسینہ آتا ہے تو میرے پسینے میں سے خوشبو نکلتی ہے, میں مکہ کی جس گلی میں جاتی ہوں وہ گلی خوشبودار ہو جاتی ہے, بلکہ میرا معاملہ یہ ہے میں جس چیز کو ٹچ کر لیتی ہوں وہ چیز بھی خوشبودار بن جاتی ہے. اے میرے ابا جان, یہ میرا قصور نہیں ہے, یہ تو کمال ہے اس بچے کا جو بچہ میرے پیٹ میں جنم لینے والا ہے, جو بچہ میرے پیٹ سے جنم لینے والا ہے, جو میرے پیٹ میں موجود ہے. یہ آمینہ بی بی کا جواب تھا, اور آمینہ بی بی بیان کرتی ہے, 7 مہینے میری پریگننسی کو گزر گئے, لیکن اس پوری مدت میں نے کبھی بے چینی بھی محسوس نہیں کی, نہ مجھے وومٹ ہوئی ہے, نہ مجھے اپکائیاں آئی ہے, اس طریقے سے میں نے بچے کو پیٹ میں رکھا ہے. آمینہ بی بی کا بیان ہے, میں سچ کہتی ہوں میرے پیٹ میں میرا یہ بیٹا موجود تھا, میں راستے میں نکلتی تھی, میں نے خود محسوس کیا جس درخت کے پاس سے گزرتی تھی وہ درخت کی ٹہنی جھک جاتی تھی, گویا وہ جھک کر مجھے سلام کیا کرتی تھی. آمینہ بی بی کا بیان ہے, میں نے خود محسوس کیا جب میں بیت اللہ جایا کرتی تھی, میں راستے میں ہوتی تھی, میری آنکھوں نے دیکھا, رات کا وقت ہوتا, آسمان کے ستارے ایسے معلوم ہوتا بالکل نیچے آ گئے ہیں. دراصل معاملہ یہ تھا وہ ستارے بھی جھک جھک کر مجھے سلام کیا کرتے تھے, اور یہ بات تو پورے مکہ میں مشہور تھی جو کئی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ جب آمینہ بی بی زمزم کے کنویں پر جاتی تھی پانی نکالنے کے لیے, آمینہ بی بی کا بیان ہے, زمزم کا کنواں, دا ویل آف زمزم, وہ بہت ڈیپ تھا, پانی بہت نیچے تھا, بکٹ ڈالنی پڑتی تھی اور رسی سے پانی کو نکالنا پڑتا تھا, لیکن آمینہ بی بی کا بیان ہے, جب سے میں پریگننٹ ہوئی تھی اور میں جب کنویں کے پاس جاتی تھی وہ کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا تھا. मुझे बकेट का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ता और ये बात मेरी सहेलियों में मक्का की औरतों में इतनी फेमस थी कि जब मैं कुएं पर जाती थी तो मेरी सहेलियां और मक्का की औरतें मुझे कहती थी यहां से हटना मत, यहां से हिलना मत, हमें भी पानी भर लेने दो, तुम चली जाओगी तो पानी भी नीचे चला जाएगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले आपकी शान और आपके एजाज को अल्लाह तबारक व ताला बतला रहा है। बल्कि यहां तक लिखा है कि अगली किताबों में यह लिखा था कि जब आखिरी नबी दुनिया में आने वाला होगा तो आसमान पर एक सितारा नजर आएगा जो रेड इन कलर होगा, जो लाल नजर आएगा। और तारीख की किताबें गवाह है, जब आमीना भी हामिला थे, लोगों ने आसमान पर वो लाल सितारा भी देख लिया था। इसलिए मशहूर हो गई थी ये बात कि कोई बच्चा आ रहा है, कोई ऐसी हस्ती आ रही है जो अल्लाह का आखिरी नबी होगा। इन बरकात को आमीना बीबी महसूस करती रही। आमीना बीबी का बयान है, हमल के आखिरी अय्याम है, रात का वक्त है, लेकिन मेरे घर का आलम यह है कि उस रात को मेरे घर में तेल भी मौजूद नहीं था। मैं घबरा रही थी, अगर रात को बच्चा हो गया, मेरे घर में अंधेरा है, मैं चिराग कैसे रोशन करूंगी। लेकिन रात गुजर गई, सहरी का वक्त आया, रोशनी फूटने लगी है और आमीना बीबी फरमाती है, बिल्कुल सहरी का वो वक्त था, सुबह की रोशनी फूट रही थी और मेरे पेट से जनाबे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्म लिया है। गोया अल्लाह ने ये बतला दिया, अंधेरा खत्म हो जाता है और रोशनी होती है तब मेरा नबी दुनिया में आता है। और गोया ये ऐलान कर रहा है, नबी दुनिया में आ गए हैं, रोशनी दुनिया में आ गई है, अब कुफ्र और शिर्क का अंधेरा खत्म हो जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है और जिस दिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं उसी सुबह में एक यहूदी आलिम ऐलान करता है कि एक बच्चा पैदा हो चुका है और वो बच्चा अल्लाह का आखिरी नबी बनने वाला है। और उस बच्चे की अलामत यह है, उस नबी की अलामत यह है, उसके दोनों कंधों के दरमियान में एक गोश्त का टुकड़ा लटका हुआ होगा। यहूदियों को जब पता चला तो वो कुरैशियों के घर में चल पड़े और जा जाकर जहां बच्चे पैदा हुए थे मालूम करने लगे। जब वो इस घर में आए, आमीना बीबी के घर में आए, उन्होंने देखा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों शोल्डर के दरमियान में एक छोटा सा गोश का टुकड़ा था जिसे महरे नबूवत कहा जाता है, जो कई हदीस की किताबों से साबित है। उन्होंने कहा यही वो बच्चा है जिसमें यह मत मिली है। वो यहूदी आलिम आए और उन्होंने आकर अमीना बीबी से इजाजत मांगी, एक बार मुझे तुम्हारा बच्चा देख लेने दो। अमीना बीबी ने इजाजत दे दी। वो यहूदी आलिम आया, उसने बच्चे को देखा, जहां बच्चे पर नजर पड़ती है उसकी चीख निकल जाती है, वो बेहोश होकर गिर जाता है। साहिबे मदारिजु नबुवा ने, साहिबे तर्जुमानु सुन्ना ने, इन हजरात ने इस रिवायत को नकल किया। जब उसे होश आया वो कहने लगा, हाय अफसोस, हाय अफसोस, बनु इसराइल से नबुवत के नाजिल होने वाली नेमत खत्म हो चुकी है, हमारे पास से ये नेमत चली गई, ये नेमत बनु इस्माइल में आ गई है। और उसके बाद उसने आमीना बीबी से कहा और सारे हाजरीन से कहा, ये बच्चे कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये आगे बढ़कर इज्जत कमाएगा, पूरी दुनिया में इसका डंका बजेगा और ये जो दावत लेकर खड़ा होगा वो मशरिक से मगरिब तक फैल जाएगी। ये आसार थे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर। यहां तक के हदीस पाक में यहां तक बयान किया गया और तारीख की किताबों में लिखा है कि वो दिन ऐसा अजीब व गरीब दिन था जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अल्लाह के नबी मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए और ईरान का बादशाह किसरा अपने दरबार में है, वो रात को सोया हुआ था। उसी रात उसने ख्वाब देखा कि उसका जो पैलेस है उसके पैलेस के 14 कंगरे गिर गए हैं। कंगरे उस जमाने में वो कंटेनर्स होते थे जो महल के फोर्ट्रेस ऑल साइड्स पर लगा दिया जाता था ताकि वो सर्दी से डिफेंड कर सके, तो वो कंगरे गिर चुके थे। जब ये पता चला उसने मुअब्बिरीन से पूछा, ताबीर देने वालों से पूछा, तो लोगों ने ये बतलाया कि आज जो तू हुकूमत कर रहा है ईरान की हुकूमत तेरे पास है, लेकिन 14 जनरेशन के बाद में ये हुकूमत तुम्हारे हाथों से चली जाएगी। उस वक्त तो उसे बहुत खुशी हुई कि आफ्टर 14 जेनरेशंस, बहुत लंबा फासला है, तब जाकर यह हुकूमत हमारे पास से चली जाएगी और 14 वालियों के बाद चली जाएगी। लेकिन उसके बाद यह हुआ, यहां इसका इंतकाल हुआ है, उसके बाद बादशाह बदलते गए, वाली बदलते गए, यहां तक के तारीख बतलाती है हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अनु के जमाने में पूरा पूरा कंट्रोल ईरानी हुकूमत पर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को नसीब फरमा दिया। बहरहाल ये कई अलामतें जाहिर हुए, यहां तक के ईरान का जो आतिशकदा था, जो फ्लेम थी जो ईरान में हजारों साल से जल रही थी, जिस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है, इधर नबी की पैदाइश हुई है, उधर ईरान के आतिशकदे की वो फ्लेम बुझ गई है। तब लोगों ने यही कहा कि कोई अजीब मामला हुआ है, गोया अल्लाह बतलाना ये चाहते थे कि आज मैंने हिदायत देने वाली शमा को, शमे हिदायत को रोशन कर दिया है, अब दुनिया के किसी शमा की, किसी फ्लेम्स की जरूरत नहीं है। और इस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि आमीना बीबी, हमारे यहां रिवाज है जब बच्चा पैदा होता है उसे बैतुल्ला ले जाया जाता है, मैं बच्चे को बैतुल्ला लेकर जाता हूं ताकि उसे बरकत नसीब हो जाए। और दादा अब्दुल मुत्तलिब अपने ग्रैंडसन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल्ला के पास लेकर आए, वहां पर खड़े रहे, दुआएं करते रहे कि मेरे बच्चे को बरकत हासिल हो जाएगी। अरे उन्हें क्या पता था कि कल यही बच्चा रहमतुल्लिल आलमीन बनने वाला है। बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हो गई, लोगों ने अलग अलग नाम तजवीज किए थे, लेकिन दादा अब्दुल मुत्तलिब ने यह कहा कि मेरा ये बच्चा इतना क्यूट है, इतना लवली है कि मैं जहां पर भी लेकर गया लोगों ने इसके हुस्न की तारीफ की, जिसने भी देखा वो उसकी तारीफ ही तारीफ कर रहा है, तो क्यों ना मैं बच्चे का नाम मोहम्मद रख दो, ये मोहम्मद का मतलब ही ये है कि जिसकी तमाम लोग तारीफ ही तारीफ करते रहे। एक रिवायत यह मिल रही है और दूसरी रिवायत यह भी मौजूद है तारीख में कि गैब से आवाज आई थी कि इस बच्चे का नाम मोहम्मद रख दिया जाए, और आमीना बीबी को यह आवाज आई थी। बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रखा गया, जिसका मतलब यह कि सारी दुनिया जिसकी तारीफ करे, और आपका नाम अहमद भी है, अहमद का मतलब है अल्लाह की सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला, मोहम्मद फिल अर्ज़ व अहमद फिस समा, जमीन में आपका नाम मोहम्मद है और आसमानों पर आपका नाम अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हो गई, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाम भी दे दिया गया, आमीना बीबी अपने यहां पर, अपने घर पर उनकी परवरिश करने लगी, और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर आमीना बीबी के पास मौजूद है। उधर ये हुआ कि मक्का मुकर्रमा से 150 किलोमीटर की दूरी पर एक कबीला था, जिस कबीले का नाम है कबीले बनू साद। 150 किलोमीटर की दूरी पर, बिल्कुल देहात और गांव का इलाका है, वहां पर यह कबीले बनू साद मौजूद है। कबीले बनू साद के कुछ औरतों ने यह इरादा किया कि हम जाएंगे मक्का मुकर्रमा और वहां पर जो छोटे छोटे बच्चे पैदा हुए हैं उन्हें हम लेकर आएंगे, अपने कबीले में लेकर आएंगे, गांव में लेकर आएंगे, उनकी परवरिश करेंगे, हम उन बच्चों को एडप्ट करेंगे, उनकी परवरिश करेंगे, बच्चे जब चलते फिरते हो जाएंगे तब हम उन्हें वापस लौटा देंगे। ये कबीले बनू साद की 10 औरतें मशवरा कर रही है। और एक बात आपको बतला दूं कि उस जमाने में मक्का में यह रिवाज भी था कि बच्चा जब पैदा हो जाता था तो मां उसे देहाती इलाकों में परवरिश के लिए भेज देती थी। उसकी दो वजह मालूम हो रही है। एक वजह तो यह है कि उस जमाने में सारी जगहों का सेंटर मक्का मुकर्रमा था, काफले यहीं आते, यहीं से वाया होकर गुजरते, तो मुख्तलिफ जगहों के काफले वहां पर आया करते थे और काफलों की आमद की वजह से वहां पर आबो हवा इतनी अच्छी नहीं थी। उसके अलावा वायरस के फैलने का काफी डर था कि लोग अपने यहां से जरासीम और वायरसेस लेकर आते। तो मक्का के बारे में मशहूर था कि वहां का जो क्लाइमेट है इतना फ्रेश क्लाइमेट नहीं है, वहां की आबो हवा इतनी फ्रेश नहीं है। तो लोग ये करते थे, अपने बच्चों को देहाती इलाकों में भेज देते थे कि उन्हें वहां पर फ्रेश एयर नसीब हो और अच्छा माहौल उन्हें नसीब हो, जिसकी बिना पर उनकी परवरिश अच्छी हो सके। दूसरी वजह यह थी कि चूंकि बहुत काफले आते थे और अलग अलग ट्राइब से लोग आया करते थे, तो मक्का मुकर्रमा के अंदर जो जबान चलती थी वो स्लैंग लैंग्वेज हो गई थी। वहां पर लोग स्लैंग बोलते थे, जो प्योर अरबिक लैंग्वेज है वो मक्का मुकर्रमा में नहीं बोली जाती थी, वहां की मार्केट की लैंग्वेज थी जो लोग मक्का मुकर्रमा में बोलते थे। तो हर माँ और बाप ये चाहते थे हमारा बच्चा प्योर अरबिक लैंग्वेज बोलने वाला बन जाए, तो उन कबाइल की तरफ भेज देते थे जहां पर लोग बिल्कुल प्योर अरबिक लैंग्वेज से कलाम किया करते थे और स्लैंग लैंग्वेज का वहां पर इस्तेमाल नहीं होता था। तो इस बिना पर बच्चों को उन देहाती इलाकों में भेज दिया जाता था। और होता यह था कि ये औरतें आती थी, बच्चों को लेती थी और उनकी फॉस्टर मदर बन जाया करती थी, उनकी तरबियत करती थी, दूध पिलाती थी, इनको मंथली एक्सपेंस भी मिला करता था। और जब बच्चा 3-4-5 साल का हो जाता, जब ये रिटर्न करते तो घर वाले बहुत बड़ा इनाम कोई प्राइज दिया करते थे, तो इनकी माशी और इकोनॉमी हालत भी अच्छी हो जाती। इस बिना पर यह सिलसिला मक्का मुकर्रमा में जारी था। कबीले बनू साद की 10 औरतों ने इरादा किया, हम अपने शोहरों के साथ में अपनी ऊटनियों को लेकर वहां पर जाएगी, मक्का मुकर्रमा जाकर वहां से बच्चों को हम सिलेक्ट करेंगे, उन्हें लेकर आएंगे, उनके फॉस्टर पेरेंट्स बन जाएंगे और हम उन बच्चों की तरबियत करेंगे। इस नियत से ये 10 औरतें वहां से चली है। इन 10 औरतों में एक औरत है जिसका नाम है हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत हलीमा सादिया, बीबी हलीमा सादिया, ये भी अपने शोहर के साथ में चली है। हलीमा सादिया का खुद बयान है, हम लोग गरीब थे, मेरे पास कुछ चंद बकरियां थी, उसके अलावा मेरे पास एक ऊटनी थी जो कमजोर थी, एक गधी थी वो भी कमजोर थी। हलीमा सादिया बयान करती है, अपनी कमजोर ऊटनी को लेकर उन 10 औरतों के साथ में मैं भी अपने शोहर को लेकर चली और मैं भी मक्का मुकर्रमा की तरफ बढ़ने लगी। कोई बच्चा मिल जाएगा जिसकी मैं तरबियत करूंगी तो मेरी इकोनॉमिकल हालत भी अच्छी हो जाएगी, और इस एतबार से वो भी रवाना हो गई। ये सारी औरतें निकली है, चुनांचे तारीख बयान करती है, बल्कि हदीसों से भी पता चलता है कि जब ये सारी औरतें अपनी अपनी सवारी को लेकर चली है, सबके पास शानदार किस्म की ऊटनियां थी, बिल्कुल हट्टे कट्टे जानवर, इनके जानवरों ने दौड़ना शुरू कर दिया और हलीमा सादिया की ऊटनी इतनी कमजोर है कि मुश्किल से उनका साथ दे पाती थी। 4 या 5 जगह ऐसा हुआ कि उन सारी औरतों को रुक जाना पड़ा, वेट करना पड़ा हलीमा सादिया के लिए, क्योंकि उनकी ऊंटनी इतनी स्लो थी कि वो बार बार ठहर जाती। ये औरतें रुकती और इंतजार करती, जब हलीमा सादिया की ऊंटनी साथ में होती फिर आगे सफर शुरू करते। चार या पांच बार ऐसे हुआ। आखिर में उन औरतों ने ये कहा, हलीमा तुम तो हमारा टाइम खोटा कर रही हो, तुम तो हमारा टाइम वेस्ट कर रही हो, तुम्हारी वजह से हमें बार बार रुकना पड़ता है। अगर तुम इजाजत दे दो तो हम जल्दी जल्दी मक्का चले जाए, वहां से बच्चे ले ले, वापस जल्दी रिटर्न हो जाए, तुम्हारी वजह से हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। हलीमा सादिया ने कहा, कोई बात नहीं, तुम जा सकती हो। उन औरतों को परमिशन दे दी गई और वो औरतें जल्दी जल्दी वहां से रवाना हो गई। वो सारा काफला निकल गया, हलीमा सादिया और उनके शोहर अपनी कमजोर ऊंटनी के साथ धीरे 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 मक्का मुकर्रमा पहुंच रहे हैं। वो औरतें वहां पर मक्का पहुंच गई, जहां जहां पता चला कि बच्चों की पैदाइश हुई है उन घरों में गई, बच्चा वहां से लिया। यहां तक के दो औरतें ऐसी भी थी जो आमीना बीबी के दरवाजे पर भी आई, आकर पहला सवाल किया, ऐना अबू हो, इनके अब्बा कहां पर है, इनके अब्बा क्या काम करते हैं। अमीना बीबी ने कहा, मेरा बच्चा यतीम है, इसका कोई बाप नहीं है। तो उन औरतों ने यह कहा कि जब इसका बाप मौजूद नहीं है तो जब हम वापस लेकर आएगी हमें कोई बड़ा इनाम नहीं मिलेगा। कमाने वाला मालदार बाप होता तो हमें बड़े बड़े इनाम से नवाज देता, हमें यहां कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा। उन्होंने मना कर दिया, हम इस बच्चे को लेकर नहीं जाएगी। और दूसरे बच्चों को इन्होंने लिया। इधर हलीमा सादिया भी मक्का मुकर्रमा पहुंच गई। वो जिस दरवाजे पर जाती है, जहां पता चला था कि नए बच्चों का जन्म हुआ है, जवाब मिलता, कबीले बनो साद की औरतें आई थी, वो लेकर गई मेरे बच्चे को, फला औरत मेरे बच्चे को लेकर गई। हलीमा सादिया मायूस हो गए, कहने लगी, आज मुझे मक्का में कोई बच्चा नहीं मिला, अगर मैं इस हालत में वापस कबीला लौटी औरतें मेरी मजाक उड़ाएगी कि इतने दूर का सफर किया और बगैर बच्चे के वापस आई। हलीमा सादिया काबतुल्लाह के पास चली गई और रोने लगी और कहने लगी, अल्लाह मुझे बच्चा नहीं मिला है, काश मुझे एक बच्चा मिल जाता। अब्दुल मुत्तलिब वहीं पर मौजूद थे। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि जा, मेरी बहू का बेटा है, मेरा पोता है, फलां जगह पर वो रहता है, जाकर वो बच्चा वहां से ले ले। हलीमा सादिया कहती है, मैं जल्दी जल्दी वहां पर गई, दरवाजा खिटखिटाया। अमीना बीबी ने पूछा, कौन है दरवाजे पर। हलीमा ने कहा, मैं बनू कबीले बनू साथ से आई हो, बच्चा लेने के लिए आई हो, फोस्टर पेरेंट बनना चाहती हो। अमीना बीबी ने कहा, माई चली जा चली जा, कितनी आई, सबने जब सुना कि मेरा बच्चा यतीम है, मेरे बच्चे को कोई लेकर नहीं गया। हलीमा सादिया ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारा बच्चा लेने आई हो, तुम दरवाजा खोल दो। दरवाजा खोल दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नन्हे से बच्चे सोए हुए हैं, चादर उड़ाई हुई थी। हलीमा सादिया बयान करती है, जब मैं बच्चे के करीब गई, जब मैंने चादर को हटाया, जैसे ही चादर को मैंने हटाया, बच्चे ने देखकर मुझे मुस्कुरा दिया। हलीमा सादिया कहती है, खुदा की कसम वो ऐसी मुस्कुराहट थी, मैंने दिल में सोच लिया, मुझे कोई इनाम न मिले, मुझे कोई पैसा न मिले, कम से कम ये बच्चे की मुस्कुराहट तो रोज देखती रहूंगी। हलीमा सादिया ने कहा, ये बच्चा मैं लेकर जाऊंगी, मुझे ये बच्चा दे दो। और अमीना बीबी ने इरादा कर लिया कि हलीमा सादिया को बच्चा दे दिया जाए। हलीमा सादिया को जब बच्चा दिया गया, हलीमा सादिया ने गोद में उठाया और हलीमा सादिया बच्चे को देखकर कहती है, ए आमीना बीबी, दुनिया में बहुत बच्चे मैंने देखे, मेरे गांव में बहुत बच्चे मैंने देखे, लेकिन ऐसा खूबसूरत बच्चा मैंने कभी नहीं देखा। आमीना बीबी ने कहा, बहन हलीमा, तुमने गांव में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा, मैं तो शहर में रहती हूं, मैंने शहर में भी ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। अब्दुल मुत्तलिब वहीं पर खड़े हुए थे, उन्होंने जब फरमाया कि मैं तो मुल्कों मुल्कों का सफर करके आया हूं, लेकिन मैंने तो तमाम मुल्कों में भी ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। मौर्रिखीन ने इतनी प्यारी बात लिखी है कि अगर उस वक्त जिब्राइल को लाया जाता और जिब्राइल को पूछा जाता कि जिब्राइल तो तुम तो बतलाओ, तो जिब्राइल ये जवाब देते कि हलीमा बीबी कहती है मैंने गांव में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा, अमीना बीबी कहती है मैंने शहर में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा, दादा अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने मुल्कों में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा, लेकिन मैं जिब्राइल कहता हूं मैंने तो पूरी दुनिया में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। और अगर अल्लाह फरमाते तो अल्लाह तो यूं कहते हैं कि जिब्राइल तुमने दुनिया में बच्चा ऐसा खूबसूरत नहीं देखा, अब्दुल मुत्तलिब ने मुल्कों में नहीं देखा, अमीना बीबी ने शहरों में नहीं देखा, हलीमा बीबी ने गांव में नहीं देखा, लेकिन मैं परवरदिगार हूं, मैं ये कहता हूं पूरी कायनात में ऐसा खूबसूरत बच्चा मैंने पैदा ही नहीं किया है। वह अहसना मिनका लम तरा कत्तु आइनी जमला मिन कलम तली दिन निसा खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ली आइबिन कान का कद खुलिकता कमा तशा। हजरत हसन इब्ने साबित रदी अल्लाह ताला अनु का शेर है, क्या प्यारा शेर है, मैं इसका तर्जमा करो। हजरत हसन इब्ने साबित फरमाते हैं बहुत सी माओ ने अपने बच्चों को जना, बहुत सी माओ ने अपने बच्चों को जना, लेकिन अमीना का लाल जितना खूबसूरत है ऐसा खूबसूरत बच्चा कोई मां नहीं जन सकी। हसन इब्ने साबित फरमाते हैं दुनिया ने बहुत सारे बच्चों को देखा है, अपनी आंखों से देखा है, लेकिन जितने हसीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ऐसे खूबसूरत बच्चे को किसी आंख ने नहीं देखा। और आगे फिर फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खूबसूरत है, इतने खूबसूरत है, ऐसा लगता है अल्लाह ने पूछा होगा नबी को बता मैं तुझे कैसे बनाओ, जैसे नबी ने चाहा वैसे अल्लाह ने उन्हें बना दिया। कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हलीमा सादिया ने बच्चे को लिया, अमीना बीबी ने अपने बच्चे को हलीमा सादिया के हाथ में दिया और मां दुआ करके अपने बच्चे को अलविदा कर रही है। मैंने उस दिन भी कहा था मां की दुआ जन्नत की हवा। माँ के बारे में बहुत सारी बातें कही गई थी, लेकिन आज फिर एक बात बतलाऊं कि आमीना बीबी ने दुआ करके अपने बच्चे को हलीमा सादिया के हाथ में दिया। मेरे भाइयों याद रखना, मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने भी जब दरिया में मूसा अलैहिस्सलाम को डालना था दुआ की थी और अपने बच्चे को दरिया में डाला था तब नाम मूसा था। माँ की दुआ के नतीजे में जब वापस आए हैं तो कली मुल्लाह बनकर आए हैं। इसी तरीके से हजरत इस्माइल अलैहि सलातु वस्सलाम को जब मां ने अलविदा किया था नहलाकर कपड़े पहनाकर, मां ने दुआ देकर बच्चे को भेजा था, गए थे तो इस्माइल थे, लेकिन वो दिन आया कि मां की दुआ की बरकत से जबीहुल्लाह बन गए थे। अभी मैंने लास्ट मजलिस में दादा अब्दुल मुत्तलिब का वाकया सुनाया, नाम तो शैबा था, जब चचा लेने के लिए आए उस वक्त अलविदा किया, मां ने तो दुआ देकर अलविदा किया था, गए थे तो शैबा थे, मां की दुआ के नतीजे में अल्लाह ने अब्दुल मुत्तलिब बना दिया और काबतुल्लाह का उन्हें मुतवल्ली बना दिया। यही सिचुएशन उस दिन भी थी कि आमीना बीबी ने अपने बेटे को हलीमा सादिया के हाथ में दिया, दुआ देकर अपने बच्चे को भेजा है, मोहम्मद नाम रखकर भेजा था, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहकर भेजा था, मां की दुआ रंग लाई कि मां की दुआ के नतीजे में कल वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन गए। इसलिए मेरे बच्चों मेरी बच्चियों मां की दुआ लिया करो. अल्लाह ने मां की दुआ में बहुत जान रखी है. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सहाबी आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मैं क्या करूं. हमारे नबी ने पूछा तेरी मां जिंदा है? फरमाया हां मेरी मां जिंदा है. फरमाया जा तेरी मां को कह तेरे लिए दुआ कर, तेरी मां की दुआ के नतीजे में अल्लाह तेरे गुनाह को माफ कर देगा. तो बहरहाल अल्लाह तबारक व ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो दौर भी गुजारा कि हलीमा सादिया ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लिया. अब हलीमा सादिया अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अब वापस अपने कबीले की तरफ लौट रही है. उनके शोहर भी साथ में मौजूद है. अब ये दोनों मियाँ बीवी जो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फोस्टर मदर और फॉस्टर फादर बन चुके हैं, इन दोनों ने इरादा किया फिर अपने घर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जाए. ऊंटनी वहां पर मौजूद थी. और उसके बाद में जब हलीमा सादिया ऊंटनी पर बैठ गई, हलीमा सादिया की गोद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, गोद में बिठा दिया, और हलीमा सादिया के शोहर है वो आगे बैठ गए और अब ऊंटनी को चलाना शुरू किया. कोशिश कर रहे हैं लेकिन ऊंटनी चलने का नाम ही नहीं लेती. किस तरह बैठे थे फिर समझाऊं. आगे हलीमा सादिया के शोहर, बीच में गोद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और पीछे बैठी है हलीमा सादिया. ऊंटनी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऊंटनी चलने का नाम ही नहीं लेती. बड़ी कोशिश कर रहे हलीमा सादिया के शोहर कि ऊंटनी चलने लगे. उसे मारा भी, धकेला भी, आवाजें भी निकाली, ऊंटनी चलने का नाम नहीं लेती. हलीमा सादिया के शोहर ऊंटनी से नीचे उतर गए. अभी नीचे उतरे हैं कि ऊंटनी ने हिलना शुरू कर दिया, तैयार होना शुरू कर दिया, चलने के लिए रेडी हो गई, जल्दी से ऊपर बैठे. ऊपर बैठते ही ऊंटनी ने चलना बंद कर दिया, फिर ठहर गई. परेशान है कि क्या मामला है. हलीमा सादिया ने कहा तुम फिर नीचे उतरो. जैसे नीचे उतरे ऊंटनी फिर रेडी हो गई, फिर चलने के लिए तैयार हो गई. उस वक्त हलीमा सादिया समझ गई ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, मैं कब से इसकी अलामतें देख रही हूं. हलीमा सादिया ने अपने शोहर को कहा मैं आगे बैठ जाती हूं, तुम मेरे पीछे बैठ जाओ ताकि सिटिंग पोजीशन ये हो जाए. आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में, बीच में हलीमा सादिया, पीछे उनके शोहर, और इस तरह सिटिंग पोजीशन को चेंज किया. हलीमा सादिया जैसे ही आगे बढ़ गए उनके शोहर पीछे बैठ गए, ऊंटनी ने चलना शुरू कर दिया. गोया ये पैगाम दिया गया कि ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इनका मकाम आगे है, इन्हें आगे रखोगे तो जिंदगी में कामयाब रहोगे, इन्हें पीछे डालने जाओगे तो तुम दुनिया में नाकाम हो जाओगे. गोया हमें सबक दिया गया कि मुआशरती जिंदगी में, तिजारत में, दुनिया में, हर मामले में नबी का तरीका आगे कर देना. नबी आगे होंगे, तुम पीछे होंगे, तुम्हारी जिंदगी में बरकत होगी. और तुम आगे बढ़ने गए और नबी के तरीके को पीछे डाल दिया तो तुम्हें कभी कामयाबी नहीं मिलेगी. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बैठे हैं, ऊंटनी को चलाना शुरू किया, ऊंटनी ने दौड़ना शुरू किया. हलीमा सादिया का बयान है न जाने मेरी ऊंटनी में कहां से फुर्ती आ गई, जब आई थी तो चल नहीं रही थी और अब इसने दौड़ना शुरू कर दिया. इतनी तेज मेरी ऊंटनी चलने लगी कि मेरी वो तमाम सहेलियां जो कबीले बनू साज से आई थी, जो मुझसे आगे निकल गई थी, मेरी ऊंटनियों ने तो सब मेरी ऊंटनी ने तो इन सारी ऊंटनियों को ओवरटेक करना शुरू कर दिया। मेरी ऊंटनी आगे बढ़ती गई, यहां तक के मौरखीन ने हिसाब लगाया जितनी देर में हलीमा सादिया मक्का से निकली, जब वो कबीले बनू साद पहुंची है, मौरखीन की तहकीक है कि ऊंटनी को अल्लाह ने वो रफ्तार नसीब फरमाए कि वो 40 किलोमीटर पर आवर की तेजी से दौड़ रही थी। ऊंटनी आगे निकल गई, सबसे आगे निकल गई, सारी ऊंटनियां पीछे रह गई। हलीमा सादिया सबसे पहले अपने कबीले में पहुंची है। जब सारी ऊंटनियां वापस आई और सारी सहेलियां वापस आई, सब हैरान है, कहने लगी हलीमा जब हम गए थे तो तुम सबसे पीछे थी, आखिर तुम्हारी ऊंटनी को हुआ क्या, तुम्हारी ऊंटनी इतनी तेज कैसे हो गई, कहीं तुमने सवारी तो नहीं बदल डाली, कहीं तुमने ऊंटनी तो नहीं बदल डाली, कहीं तुमने सवारी को तो नहीं बदल दिया। हलीमा सादिया ने फरमाया सवारी को मैंने नहीं बदला, मेरी सवारी का सवार बदल चुका है, मेरे पास यतीम नहीं है, यतीमों का वाली मौजूद है। और हलीमा सादिया फरमाती है फिर मैंने जिंदगी में ऐसी ऐसी बरकतें देखी है, बल्कि बयान करती है कबीले बनू साद का बयान है कि जिस दिन से वो बच्चा हमारे कबीले में आया है, पूरे कबीले के घरों में स्ट्रीट्स में इतनी खुशबू आती थी, ऐसे मालूम होता था कि पूरी स्ट्रीट में किसी ने रूम फ्रेग्रेंस को छिड़क दिया हो, एयर फ्रेशनर छिड़क दिया गया हो, इतनी खुशबू पूरे कबीले में महकती थी। और जिंदगी में हलीमा सादिया बयान करती है बहुत सारी बरकतों को मैंने देखा, यहां तक के जब 4 साल की उम्र जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो गई, वो वक्त आया हलीमा सादिया को हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस लौटाना था। 4 साल की उम्र में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर हलीमा सादिया वापस आई है, और 4 साल तक परवरिश करने के बाद आमीना बीबी को उनका बच्चा वापस लौटा दिया। हलीमा सादिया ने क्या क्या देखा, ये बहुत लंबी बातें हैं। बहरहाल मेरा चूंकि टाइटल है कि पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हलीमा सादिया भी चूंकि आपकी रजाई वालिदा है, फॉस्टर मदर है, इसलिए ये बातें मैंने आपके सामने बयान कर दी। बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 साल की उम्र में बीबी आमीना के पास वापस लौटा दिया गया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी जान के पास आ गए। 6 साल की जब उम्र हुई है, 6 साल की जब उम्र हुई है, आमीना बीबी ने इरादा किया कि मैं एक मरतबा फिर अपने मायके चली जाऊं, मदीने पाक का सफर कर लो। और आमीना बीबी अपनी एक बांदी जिनका नाम है उम्मे अयमन, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गई। याद होगा आपको लास्ट मजलिस में मैंने कहा था कि आमीना बीबी का मायका भी मदीना मुनव्वरा है, और ख्वाजा अब्दुल्ला की मौत भी मदीने में आई थी, उनको वहीं पर दफन किया गया था। चुनांचे आमीना बीबी ने सोचा मैके भी चली जाऊंगी, अपने शोहर की कब्र पर भी चली जाऊंगी। इस बिना पर आमीना बीबी अपने मैके की तरफ रवाना हुई, मदीना मुनव्वरा पहुंच गई, और मदीना मुनव्वरा में रहने के बाद एक दिन वो भी आया अपनी बांदी को लेकर, अपने बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वो उस कब्र पर पहुंचे जहां पर कब्र में उनके शोहर सोए हुए थे। हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे वो दिन याद है जब मेरी अम्मी मुझे मेरे अब्बा के कब्र के पास लेकर गई थी। मेरी अम्मी रोए जा रही थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेरी अम्मी कुछ बोल भी रही थी, मुझे वो याद नहीं है मेरी अम्मी ने क्या कहा था, कौन से जुमले कहे थे, लेकिन मेरी माँ के रोने को देखकर उस दिन मैं भी रोने लगा था। मैं भी अपने अब्बा की कब्र पर खड़े रहकर रो रहा था, मेरी अम्मी भी रो रही थी। मेरी आंखों से इसलिए आंसू जारी थे कि मेरी माँ को रोता हुआ देखकर मुझे भी रोना आ गया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रोना तो मुझे याद है लेकिन मेरी अम्मी जो बातें कर रही थी वो मुझे नहीं मालूम है, मेरे अब्बा की कब्र पर वो कुछ कह रही थी। मौरखीन ने लिखा है, ये तो हमें नहीं मालूम कि क्या कहा था उस दिन आमीना बीबी ने, लेकिन दिल ये कहता है, अकल ये कहती है कि आमीना बीबी ने यही कहा होगा, ए मेरे सरताज अब्दुल्ला, तुमने तो मुझे वादा किया था तुम वापस घर पर आओगे, दरवाजे पर इंतजार करना, मैं तैयार होकर दरवाजे पर तुम्हारे इस्तकबाल के लिए खड़ी थी, लेकिन तुम वापस नहीं आए, तुम हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए। और हाँ, जो अमानत तुम मुझे देकर गए थे, देखो मैं अमानत को तुम्हारी कब्र पर लेकर आई हूँ, ये मेरा बेटा मेरे साथ है, अल्लाह ने इसे बहुत खूबसूरत बनाया है, काश तुम भी इसे देख लेते, कैसा खूबसूरत बच्चा अल्लाह ने तुम्हें नसीब किया है। यही कुछ जुमले होंगे जो आमीना बीबी ने कहे होंगे। बहरहाल अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तक मेरी अम्मी रोती रही मैं भी रोता रहा। उसके बाद हम लोग वहां से कब्र से वापस हुए, फिर मदीना मुनव्वरा शहर में गए और फिर हमारे लौटने का वक्त आ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अम्मी जान के साथ, खादिमा उम्मे ऐमन के साथ और मैं, हम तीनों वापस सफर में लौटने लगे। मदीना मुनव्वरा से हम वापस हो रहे थे, 6 साल की अल्लाह के नबी की उम्र है। एक गांव बीच में आया जिसका नाम अबुआ है, तारीख की किताबों में अबुआ लिखा है। उस गांव में जब हमने कयाम किया, मेरी अम्मी की तबीयत खराब हो गई। अल्लाह के नबी का बयान है, अभी तो तबीयत खराब हुई है और थोड़ी देर गुजरी, मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा आमीना बीबी बीच रास्ते में अबुआ गांव में आमीना बीबी का इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरी अम्मी का भी इंतकाल हो गया। उम्मे ऐमन ने मेरा हाथ पकड़ा और वो अकेले मुझे लेकर, मेरी अम्मी को वहां पर दफन करने के बाद मुझे लेकर मक्का मुकर्रमा वापस आने लगी। यहाँ तारीख बयान करती है, अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते से इतना प्यार करते थे कि रोजाना मक्का की बाउंड्री पर आकर बैठ जाते, आज मेरा पोता आएगा, आज मेरा पोता आएगा, और इतना रोते थे कब मैं मेरे पोते को देखूंगा, रोजाना इंतजार करते थे। वो दिन भी अब्दुल मुत्तलिब मक्का की बाउंड्री पर बैठे हैं, दूर से देखा कोई साया नजर आ रहा है, अब्दुल मुत्तलिब को उम्मीद बन गई, उठ गए, दौड़ने लगे तो देखा कि मेरा पोता तो आ रहा है, उम्मे ऐमन भी मौजूद है, लेकिन मेरी बहू का नामो निशान नहीं है। अब्दुल मुत्तलिब दौड़ते हुए गए, उम्मे ऐमन को पूछा, हमारी आमीना बीबी कहां चली गई, आमीना बीबी क्यों नहीं आई। उम्मे ऐमन ने जवाब दिया, ए अब्बा जान, ए अब्दुल मुत्तलिब, ये बच्चा बाप को तो खो चुका था, इसने अपनी मां को भी खो दिया है। बच्चे की वालिदा का इंतकाल हो गया, अबवा में उसे दफन कर दिया गया। अब्दुल मुत्तलिब बहुत रोए हैं, अपने पोते को सीने से लगाकर रोने लगे और फरमाया, पोते आज तू मेरा बेटा है, मैं तुझे कभी जुदा नहीं करूंगा। और अब्दुल मुत्तलिब उन्हें अपने घर पर लेकर गए। तारीख बतलाती है, उस दिन जब अब्दुल मुत्तलिब की परवरिश में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, नबी की उम्र 6 साल है और अब्दुल मुत्तलिब की उम्र 81 years old है। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते को लिया और खुदा की कसम तारीख बयान करती है, इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है, माँ का प्यार दिया, बाप का प्यार दिया, दादा का प्यार दिया, हर वक्त अपने साथ रखते थे। जब काबतुल्ला जाते, काबतुल्ला के करीब में एक चटाई बिछा देते थे, वहां पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाते, हुजूर वहीं पर खेलते, किसी को इजाजत नहीं थी उस चटाई पर बैठे, इतना ख्याल किया करते थे। एक दिन एक शख्स बयान करते हैं, कनीफ इब्ने सईद उनका नाम है, बयान करते हैं कि मेरे वालिद ने बयान किया था मुझे, एक दिन मैं काबतुल्ला गया, मैंने अब्दुल मुत्तलिब को देखा, बहुत परेशान है, परेशानी के आलम में एक शेर पढ़ रहे हैं और रो रहे हैं। तो मेरे वालिद ने पूछा क्या हो गया, अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, मेरा जो पोता मोहम्मद है, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पोते को मैंने, ऊंट मेरा घूम गया था, ढूंढने के लिए भेजा था, क्योंकि मेरा पोता ऐसा पोता है जो काम सुपुर्द करता हो अल्लाह वो काम पूरा करवा देता है। मैंने पोते को भेजा था कि वो ऊंट ढूंढ कर लाएगा, बहुत देर हो गई है, मेरा पोता अभी तक नहीं आया, मैं इसीलिए परेशान हो। और वो बयान करते हैं कि थोड़ी देर गुजरी, हमने देखा कि जनाबे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नन्हे से बच्चे हैं, ऊंट की रस्सी पकड़कर उसे लेकर वापस आए। अब्दुल मुत्तलिब इतने खुश हो गए, हुजूर को सीने से लगा दिया और फरमाया, बेटा आज के बाद मैं तुझे कभी जुदा नहीं करूंगा, एक लम्हे की जुदाई तेरी बर्दाश्त नहीं होती। और इस तरीके से 2 साल तक अब्दुल मुत्तलिब ने बड़े लाड़ो प्यार से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश फरमाई। अल्लाह का करना 2 साल के बाद में वो दिन भी आया, दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। उम्मे अयमन बयान करती है, मेरी आंखों ने देखा था जब दादा अब्दुल मुत्तलिब का जनाजा उठा था, अल्लाह के नबी पीछे रोते रोते भाग रहे थे, और या जद्दी ए मेरे दादा, ए मेरे दादा, इस तरह आवाज निकाल रहे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का भी इंतकाल हो गया, दादा के बाद में चचा की परवरिश में आ गए। चचा अबू तालिब ने भी बड़े लाड़ प्यार से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश फरमाए। एक बात कहता हुआ चलो दरमियान में कि आमीना बीबी का इंतकाल हो गया, ख्वाजा अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया, लेकिन तमाम मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन मौर्रिखीन की राय है कि आमीना बीबी भी और ख्वाजा अब्दुल्लाह भी, ये दोनों के दोनों उस वक्त फितरत सलीमा पर मौजूद थे, शिर्क और कुफ्र से दूर थे, इस बिना पर वो जन्नत में जाएंगे। और वैसे भी वो जनाबे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन है। दुनिया में एक प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट निकलता है तो उसके पेरेंट्स को भी इज्जत के साथ में ले जाया जाता है, ये तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन है। हम तो ये कहते कल कयामत में ऐलान होगा, हट जाओ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के वालिदैन आ रहे हैं, अल्लाह के नबी ने उनके लिए सिफारिश की है, जाओ जाओ उन्हें जन्नत में दाखला दे दो। बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर चचा की परवरिश में आए, और फिर चचा ने भी बड़े लाड़ और प्यार से पाला। एक दिन वो आया, चचा का भी इंतकाल हो गया, सहारों पर सहारे टूटते ही चले गए, पहले अब्बा चले गए, अम्मी चली गई, दादा चले गए, चचा चले गए, अल्लाह ने सारे सहारों को तोड़ दिया और दुनिया वालों को ये बता दिया, मेरा नबी ये कहता है अल्लाह पर भरोसा करना, अल्लाह के सहारे पर जीना, एक अल्लाह को मानना। अगर मैं मेरे नबी को दुनिया में बहुत सारे सहारे दे देता तो लोग सवाल करते, एक अल्लाह के सहारे की दावत देने वाला खुद तो सहारों में पल रहा है, इसलिए हमने सहारे तोड़ दिए, जितने सहारे हो सकते थे सब खत्म कर दिए और दुनिया को बतला दिया, ये बच्चा यतीम था, ये बच्चा यतीम था, लेकिन हमने उसे पाला और दुर्र यतीम बना दिया। यतीम कहा जाता है ऑर्फन को, और दुर्र यतीम कहा जाता है एक ऐसे पल को जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं हो सकती। अल्लाह तबारक व ताला ने पूरी दुनिया को यह सबक बतला दिया कि हम जब तरबियत करने पर आते हैं तो यतीम को दुर्र यतीम बना देते हैं, रहमतुल लिल आलमीन बना देते, لیتے ہیں کہو صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے صورتحال میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے اور آپ کے دادا دادی کی آپ کے گرینڈ پیرنٹس کے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اللہ تعالیٰ اس پیارے نبی کی سچی محبت نصیب فرمائے نبی کے کون سے باب پر بیان کیا جائے حضرت شاہ عطا اللہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے میرے نبی کی شان اتنی نرالی ہے کہ نبی کی حالت کے جس سبجیکٹ پر میں بات کروں میں اطمینان سے چار چار گھنٹہ بیان کر سکتا ہوں ایک ٹاپک پر نبی کی زندگی پر نبی کے بچپن پر نبی کی جوانی پر فرماتے ہیں اتنا نبی کی شان اتنی نرالی ہے میں ہر سبجیکٹ پر چار چار گھنٹے بات کر سکتا ہوں حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھی ہے عشاء کی نماز پڑھ کر کاغذ لیا اور سوچا کہ میں میرے نبی کو ایک خط لکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک خط لکھو لکھنا شروع کیا رات کو شروع کیا ہے صبح تک لکھتے رہے اور جب صبح میں دیکھا تو وہ 150 پیج کی ایک کتاب بن چکے تھے وہ کتاب آج بھی اردو میں ملتی ہے النبی الخاتم اس کا نام ہے 450 ٹاپکس ہے اور 150 پیجز ہے ایک رات میں نبی کی شان میں خط لکھنے گئے تو ایک کتاب لکھ دی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم زندگی بھر بیان کرتے رہے اس کے بعد بھی ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے خلاصہ یہ ہے نبی سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہم پر لازم ہے اللہ اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحم لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما مولا بڑے گنہگار و خطا کار ہے اللہ پوری زندگی نافرمانیوں میں گزری ہے مولا بدن کا ایک ایک بال گنہگار ہے ایک ایک عضو گنہگار ہے سر کے بال سے پیر کے ناخن تک گناہوں میں گندے ہو چکے ہیں مولا تیری بارگاہ میں آئے ہیں دیا کی بھیک مانگ رہے ہیں اللہ معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اللہ رحم فرما دے اللہ کرم فرما دے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دے مولا ہدایت سے مالا مال فرما دے رب کریم ہم سے راضی ہو جا اللہ ابھی اور اسی گھڑی راضی ہو جا مولا تو ہی ہمارا خالق و مالک و رازق ہے جیسے بھی ہے تیرے نام لیوا ہے اللہ رحم فرما دے مدد فرما دے نصرت فرما دے عافیت کا معاملہ فرما دے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد نصیب فرما دے با اولاد کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے والا بنا دے الہ العالمین ہمارے والدین پر رحم فرما دے مولا والدین بہت بڑی امانت ہے الہ العالمین ہمیں ان کی خدمت کرنے والا بنا دے انہیں راضی رکھنے والا بنا دے ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما دے جن کے والدین مرحوم ہو چکے ہیں اللہ ان مرحوم والدین کی مغفرت فرما دے الہ العالمین زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے ایک دن آئے گا یہ آنکھیں بند ہو جائے گی مولا موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے اور اللہ جب ہماری موت کا وقت آ جائے ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری فرما دینا اللہ اپنی شایہ نشان اپنی بارگاہ عالیہ میں ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد